ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 41 इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो ये दोनों श्लोक में चर्चा करना है कि इसमें तात्पर्य थोड़ा छोटा है, मतलब एक लाइन का है, दोनों का भाव एक ही है जैसा, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा तात्पर्य है दूसरे लाइन में। तो हम उच्चारण करेंगे दोनों श्लोक को, जो है बोर्ड पर हम उच्चारण करेंगे, दूसरा हम पढ़ लेंगे। यत्यत् विभूति मत सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वम् मम तेजांश संभवम्। यत्यत् विभूति मत सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वम् मम तेजः अंशसंभवम्। यत्यत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वम् मम तेजांश संभवम्। दोहराइए। तेजांश संभवम्। शब्दार्थ यत्यत् जो जो विभूति ऐश्चर्य मत युक्त सत्वम अस्तित्व श्रीमत् सुंदर ऊर्जितम तेजस्वी एव निश्चय ही वा अथवा तत्तत् वे वे एव निश्चय ही अवगच्छ जानु त्वं तुम मम मेरे तेजः तेज का अंश भाग या अंश से संभवम उत्पन्न। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। 42 भी श्लोक हम चरण करेंगे। अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते न तब अर्जुन दिष्टव्याहम इदम कृष्णम एकाम सेनो स्थितो जगत। अनुवाद इस प्रकार, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहां पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्यों कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था या मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवताओं की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहां पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। वे समस्त उत्पन्न जीव के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असंवर्ध है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वो ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं, किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंश का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्चक्तिलेशात् सूर्यार्ध्या भवन्ति त्युग्रतेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमे अर्च्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आए हुए सभी भक्तों को हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन बॉम्बे की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं इस भगवद्गीता कक्षा में। तो हम ये 10वें अध्याय की अंतिम श्लोकों को हम आज उच्चारण किए, जिसमें हम किस तरह श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में और समझाए हमको, तो हमें आज इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो ये 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, क्योंकि अर्जुन इसी अध्याय में ये जब भगवान ने यहाँ पर अपने बारे में बताया कि जैसा कि ये चतुश्लोक भगवद्गीता है इसमें या चतुश्लोक भागवत में भी भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में भी उन्होंने बताया कि जो चार श्लोक भागवत में ब्रह्मा को बताया था, तो वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी को कि सृष्टि की प्रारंभ में मैं ही था, सृष्टि के अंत में भी मैं हूं, और मैं इस सारी सृष्टि को बनवाया हूं, और इस तरह मैं ही हूं, आदि अंत सभी जगह मैं हूं। फिर दूसरे उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, कहा जो मेरे संबंध में है वो सब वास्तव है, रियल है, जो मेरे संबंध में नहीं है वो सब अनरियल है या जो फॉल्स है, आप उसको कहते अंधकार कह सकते, ऐसा कह सकते। तीसरे में कहा भगवान ने कि ये जो भौतिक तत्व है वो जिस तरह इस विश्व ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जैसा कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पांच महत्व तो जिस तरह इस पृथ्वी में प्रवेश, इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बावजूद भी अलग रहते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, जल है, आकाश है, अग्नि, ये होते हुए भी बाहर भी पृथ्वी है, आकाश है, बाहर भी है, तो जिस तरह ये अलग दोनों रहते हैं उसी तरह मैं संसार को बनाने के बावजूद भी मैं अलग रहता हूं। चौथा उन्होंने कहा जो व्यक्ति मुझे जानना चाहता है या आध्यात्मिक चीजों को जानना चाहते हैं तो वो कहां तक पहुंचना चाहिए, वो मुझ तक पहुंचना चाहिए, अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण होना चाहिए। ये चतुश्लोकी भागवत भागवत में कहा, ये भगवद्गीता में भी ऐसा कहा, भगवद्गीता में भी उन्होंने कहा चार श्लोकों में, पहले जो इसमें आठ नंबर श्लोक में कहा था अहम सर्वस्व प्रभव, ये सभी जो हो भगवान सब से ही निकलता है। भागवत में भगवान ने कहा जन्मादियतः अन्यात इतरश्चार्थी सो अभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती यत सूर्य तेज वारी मृदा विनिमयम तिसर्गो मूर्छा। ये संसार में जो भी आप देख रहे हो इट इज द इंटरेक्शन ऑफ थ्री मोड्स ऑफ नेचर, ये हम देखते हैं, लेकिन इसमें हम धोखा खा जाते हैं, कभी कभी जड़ को स्थल, स्थल को जड़ मानते हैं, ये हमारे लिए नहीं, मुह्यंती यत सूर्य हम मनुष्य के लिए नहीं, इवन देवताओं भी इसमें भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भगवान से सब कुछ निकलता है, कई क्या क्या निकलता है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, और प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, ऐसा भगवान उपदेश दे रहा है। फिर दूसरा उन्होंने कहा तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रति पूर्वकम, और ऐसे जानने के बाद क्या करते, खाली जानकर बैठ नहीं जाते, वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं और भगवान इसे ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज सुबह प्रवचन में, आज की बड़ी अच्छी प्रवचन था जिसमें प्रभु जी ने बताया था कि फिर फॉलो ए ग्रेट पर्सन देन यू विल बिकम ग्रेट, आप तब महान बनते हो जब आप एक महान व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। लेकिन हमको पूरी तामझाम से पढ़ाया जाता है बचपन से कि आप प्रयास करो, मेहनत करो और आप महान बन जाओगे। प्रायतः आज की इतना भी सारे आप मोटिवेशन स्पीक सुनिए, जो भी लोग बताते रहते हैं यू विल बिकम ग्रेट बाय हार्ड वर्क, है ना। तो प्रभु जी ने बहुत पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें बताया था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि व्यक्ति अभ्यास करे, प्रयास करे तो परफेक्ट हो जाएगा, एक दिन उसको लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो उदाहरण उन्होंने दिया था, अगर हम तैरना चाहते हैं अपने जीवन में तो मनुष्य का बच्चा भी जन्म लेता है और मछली का बच्चा भी जन्म लेता है ना, और मछली बच्चा पानी में जन्म लेता है और जैसा जन्म होता है ऐसा तैरने लगता है। लेकिन आप सोचेंगे कि मनुष्य और मछली दोनों समान है, चलो ये भी जन्म लिया, वो भी जन्म लिया, इसको भी चलो पानी में डालते हैं, तो मनुष्य बच्चा तैरने लगेगा। तो यहां पर हो सकता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि व्यक्ति वो बच्चा भी ऐसा हाथ पैर थोड़ा हिलाएगा तो रोता तो तैर सकता है नहीं, क्योंकि उसमें वो प्रवृत्ति नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे जब आपके अंदर वो प्रवृत्ति है,
तो भगवान की भक्ति करने के लिए सभी मनुष्य में प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, इसीलिए वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको सफलता मिलेगा। इसीलिए सभी को विधि भक्ति की कहा जाता है। जस्ट प्रैक्टिस, चांट हरे कृष्णा, भगवान के नाम जप करिए, मंदिर आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, सभी को आप कह रहे हैं ना, जिसको भी मिल रहा है आपको बोलो ना, चांट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, ये कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो टेंडेंसी है, इसलिए उसको सफलता मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रवचन है, ददामि बुद्धि योगम तम, हमको रियल नॉलेज मिलेगा कब? जब हम भगवान के भजन करेंगे। फिर उन्होंने कहा तेसाम, कौन सा श्लोक, यस दशा, तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजतम, और मैं उनको कृपा करके उनकी जो जो अज्ञानता है उसको मैं दूर कर देता हूं। ये भगवान की कृपा से ही हमारा अज्ञानता दूर हो सकता है। और इसी तरह भगवान ने यहां पर उपदेश जो दिया, हाँ और एक छूट गया यार, नौ नंबर जो था, मच्चिता मदगत प्राण बधयंत परस्पर, अरे भक्तों लोग का कार्य क्या है वो बताया, दे लोज डिस्कस अबाउट मी, वो मेरे बारे में विचार करते हैं। तो इस तरह अर्जुन, फिर अर्जुन अपने स्टेटमेंट देता है। उसके बाद अर्जुन कहता है, अर्जुन ऐसा भी भगवान के बारे में इस चार श्लोक सुनने के बाद टोटली कन्विंस्ड, समझ चुका था कि कृष्ण कौन है। फिर वो इसमें अंत में पूछता है, कथम विद्याम अहम योगम स्वाम सदा परिचिंतनम केसु केसु चो भावेशु, किस तरह मैं आपका चिंता कर सकता हूं, आपके बारे में सोचूं, विचार करूं, कैसे जान सकता हूं इन डिटेल। तो भगवान ने इन डिटेल इसी अध्याय में वर्णन करते हुए लगभग भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य को 72 अलग अलग उन्हें बताया। लेकिन बताने के उपरांत बोलते हैं ये जो आज जो श्लोक है, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत उर्जितम एव वा, जो यहां पर अब श्रीमंत देख रहे हैं, मतलब सुंदरता देख रहे हैं, और जो तेज देख रहे हैं, ये सब क्या है? तेजो अंशम संभवम, ये मेरे से ही जन्म होता है, मेरे से प्रकट होता है, एक छोटा सा अंश में बताया। ऐसे डिटेल जो है, डिटेल से बता रहे हैं, लेकिन बट वो भगवान बोल रहे कि ये छोटा सा अंश है, कण है जस्ट। ऐसा क्यों बोले? तत एव अवगच्छ, तो भगवान बोलते यू मस्ट नो, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम संसार में जो भी देख रहे हैं, हमें जानना चाहिए भगवान के कुछ क्षण अंश है। लेकिन आज के समय में साधारणतः ये जो भगवान जो है, हमारी पूरा दिमाग से उमिट कर दिया गया है ना। और वो क्या बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज इनोवेटेड, सब बनाया जा रहा है या इसका रिसर्च किया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो समाज की स्थिति में हम किस तरह समझेंगे इसको कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड, भगवान से आया, भगवान कृष्ण से आया, कैसे समझेंगे? शास्त्रों से समझेंगे। तो ये जो भगवान की जो विभूति है, इसको आप बोलेंगे सुपर नेचुरल पावर। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन दिया था, पीपुल्स हैव फेथ ऑन सुपर नेचुरल पावर, है ना, अलौकिक शक्ति में ज्यादातर उनका विश्वास होता है और चमत्कार को नमस्कार करते हैं सभी जगह है? तो साधारणतः लोग सुनते हैं कभी कभी प्रवचन, तो जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में, बोलते हैं ओ गॉड प्लीज सप्लाई और डिलीबरेट, तो रोजी रोटी दीजिए, भगवान के पास जाते हैं। और जो रशिया में लोग रहते थे, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो जा करके चर्च के सामने रोटी भर के ले जाते थे और पूछते थे, आपने जीसस को मांगा क्या, आपको रोटी मिला? नहीं मिला ना, तो जीसस नहीं है और ये बकवास है, आप हमसे रोटी लीजिए, हम रोटी। तो इस तरह लोगों भ्रमित होते थे। और प्रभुपाद जी बोलते थे, लोगों का इतना बुद्धि नहीं होता कि इनका मन में ये प्रश्न नहीं आता कि भाई रोटी कहां से लाया आपने, इसके लिए जो गेहूं था, इसके लिए जो ट्रक ले में भर के ले आए, जो बनाने वाले थे, ये सारे जो रॉ मटेरियल जो भी उसका उच्च है, वो कहां से, वो कोई नहीं पूछता। उसी तरह हमारा सोच है। तो फिर एक लेख लिखा था, नो गॉड ऑफ देयर, मतलब जब रशियन लोग पहले गए कहां, महाकाश में, स्पेस में गए, तो वहां पर उनके जब गया तो उनके जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो लोग भगवान को मिले नहीं उधर। वो तो बोलते गॉड इज रिसाइडिंग इन किंगडम ऑफ गॉड, वो हेवन में रहता है, ऊपर रहता है बोलते ना सब लोग, वो बनाया इधर नहीं आता बोलते, वो बनाया है लेकिन इधर नहीं, उनका उतना तक सोच है। तो एक कम्युनिस्ट बोलते हैं कि देखो ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे उन्होंने तो मिल के आना चाहिए, वहां पर हैंडशेक करके आना चाहिए, उनसे बातचीत करके आना चाहिए, इसे नो गॉड ऑफ देयर, वहां पर भगवान नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसी तरह जब आप बोलेंगे कि कृष्ण इस अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही निकलता है, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आज सुबह बताए थे प्रभु जी कि रंती देव के जो फॉलोअर्स थे, रंती देव एक शुद्ध भक्त थे, अच्छे भक्त, गुड भक्त थे, तो उनके फॉलोअर्स भी उनके फॉलो करके क्या किए, उनको भी आसानी से शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिला था, वैदिक ज्ञान मिला था। वो तो कई उदाहरण दिए, जस्ट फॉलो। तो हमें भी शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर जब चलते हैं तो हमें भी ज्ञान मिलता है। लेकिन यहां पर ये बात या प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि साधु संत जो बोले हैं क्या ये लोग बुद्धिमान है सही, तो लोगों को लगता है ये सब अंधविश्वास है। तो फिर महाराष्ट्र में एक संस्था बनता है अंधविश्वास निर्मूलन संस्था, ऐसा भी संस्था बनता है अंधविश्वास निर्मूलन। जब हम गीता के बारे में प्रवचन करते हैं तो उनका विश्वास नहीं होता, जब अदर फिर दूसरा कुछ भी विश्वास करते हैं। तो जो ये शास्त्र इसलिए कहा गया, स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, वैसे उत्पात मचाते रहते ना तो फॉलो करते हैं। आप किसी को पूछिए, मैं बुक्स बांटता हूं पूरा टॉप टू बॉटम, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, जहां भी जाता हूं, और कई लोग डिबेट करने आ जाते हैं, पूछने आ जाते हैं, और बड़ी बड़ी बात करते हैं, भगवदगीता भागवत ऐसा कुछ भी बोले, भगवदगीता में लिखा है, और आप पूछो कहां लिखा है, वो फिर बने बोले नहीं नहीं कहां से, खाली लिखा है बोल देंगे, कहां लीजिए भगवदगीता कहीं लिखा है तो बताओ फिर नहीं। तो इसमें मेरा प्रचार के दौरान मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो ये जो भगवदगीता के 10 चैप्टर ना, इसका 3 नंबर श्लोक जो है हम पढ़ते हैं, इसमें बड़ी अच्छी है, आपको दिखा रहा हूं। तीन नंबर श्लोक बड़ी ये अच्छा श्लोक है, याद रखो। वो बोलते हैं योमाम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्यु सर्व पापे प्रमुच्यते। इसमें बताते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो आप समझ रहे हैं यहां पर डिबेट करते हैं लोग, मतलब जो मुझे अजन्मा जन्म नहीं लेता है जानता है। तो लोग फिर प्रश्न ये भगवदगीता के श्लोक ले लिए और फिर डिबेट करने आ जाते हैं, देखो आपकी जो भगवान है ना सब जन्म लिया, हमारा जो एक ईश्वर है जन्म कभी नहीं लिया, कभी नहीं, उसका जन्म का कोई डेट भी नहीं है और इसका कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे भगवान को मानते हो जो कि जन्म लिया है। लेकिन मैं उनको पूछा ये जो बोल रहा है कौन बोल रहा है, योमाम अजम अनादिम च ये बात कौन बोल रहा है, तो बोले कि भगवदगीता में कहा गया है, आपकी ग्रंथ में बताया, आपकी ग्रंथ है ऐसा बोलते, आपकी ग्रंथ में मुझे खोल के भी दिखा, हाँ ये देखो यहां पर। तो मैंने ये कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, वो फिर आगे के नहीं सोचते, ऐसे भगवदगीता के श्लोक कहीं के उठा करके और अपने डिबेट करने आ जाते हैं। ये सीरीज ऑफ टॉक इन बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो बंधु के बाद ये सीरीज बात हुई है, किसकी किसके बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन रहा है, कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं योमाम अजम अनादि, जो मुझे अजम मतलब जन्म अजन्मा और अनादि जिसका आदि नहीं है वैसा जानता है, तो कृष्ण कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, है ना। कृष्ण किसके बारे में बता रहे हैं? खुद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कृष्ण जन्मा है, है ना। आप ही जन्माष्टमी मनाएंगे अभी, फिर ये क्या है? ये जन्माष्टमी मनाने वाला फिर क्या है? आजकल तो पुरुष जयंती बहुत मनाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं जो जन्म जयंती मनाते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड आइडलरशिप। आइडलरशिप क्या है? वो लोग बोलते हैं मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं कि रोड के चौक में महात्मा गांधी, इधर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज, है ना, ऐसा बहुत सारे मूर्तियां लगी रहती है और कोई भी प्रणाम नहीं करता उनको, जाते वक्त कोई भी टोपी नहीं खुलता मराठी लोग। लेकिन जयंती का दिन आप देखो, उसका पहले दिन अच्छा साफ करके वहां पर बड़े बड़े माला, इससे छोटा माला, ये बड़ा बड़ा माला, बहुत बड़ा बड़ा माला ले जाते, इतना बड़ा माला लेकर के उसको भी डीटी जो विग्रह रहेगा उसका विग्रह के नीचे तक माला रहता है। एक दिन बस जयंती मनाए, चले दिए, चल दिए। अब वो ऐसा ठाकुर जी का पूजा नहीं होता है। और चाहिए सीढ़ा बुद्धि, लोग सीढ़ा बुद्धि करते, विग्रह को सीढ़ा है। अगर सीढ़ा होता तो इधर भक्त लोग 4:30 बजे क्यों आके आरती करते, इधर क्या जरूरत पड़ता है, है ना। 4:30 बजे कोई जरूरी है? अभी पत्थर तो इधर क्यों जाने का उसके सामने, क्यों उसके लिए इतना 56 भोग बनाने का। बट हमें समझने की जरूरी है। तो काफी समय प्रचार के दौरान और लोग आधा आधा उधर पढ़ते, कुछ आधा पढ़ लेंगे और उसके ऊपर डिबेट करने आ जाते हैं और बोलते हैं। ऐसा भारत में आज के समय बहुत सारे संत हैं जो कि बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान प्रचार करते हैं। बड़ा डिवोटीज भक्त लोग जो है उससे भी महान है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पहले से लेकर के आखिर तक पूरी भगवत गीता के भगवान कृष्ण अर्जुन के संवाद को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवत गीता को प्रामाणिक स्रोत से जब श्रवण करते हैं तब तो हमको यह मालूम पड़ता है भगवान के ये विभूति ऐश्वर्य क्या है, इसको हम फिर ठीक ठीक जान सकते हैं। वैसे तो कठिन है पूरा पूरा ऐश्वर्य को जानना है, भगवान पूरी भी डिटेल नहीं बताया, थोड़ा सा बताए हैं कि इसी तरह आप जान सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जिक्र करते हैं एक मिशन है भारत में जो कहता है जो तो मत तत्वपात दरिद्र नारायण। आप सुना है सब दरिद्र नारायण, वो बोलते हैं मिशन, वो बोलते हैं कि आप किसी भी पथ में किसी भी मार्ग में जाओ आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। फिर कहां से ये बताया वो मालूम नहीं। दे आर प्रीचिंग अबाउट भगवद गीता, बिग बिग स्वामी, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े प्रवचन। किस तरह प्रवचन है वो? कि लोगों को भ्रमित करने वाला प्रवचन है। अगर भगवत प्रभुपाद बोलते हैं, अगर भगवत गीता का प्रचार करते हैं तो भगवत गीता को ऐसी ठीक प्रचार करो जैसी आहे तसी यथारूप तेन मूल रूपे, है ना, जिस तरह उस तरह प्रचार करो। डोंट चेंज, डोंट मिक्स, डोंट अडल्टरेट, सब्स्ट्रैक्ट कुछ भी मत करो। तो ये जो पद्धति है कि लोग कहते हैं आप देवताओं की उपासना करने से भी आप क्या करोगे भगवान तक पहुंच जाओगे, इसलिए पद्म पुराण में इसकी बारे स्ट्रिक्ट मना किया गया है। जो है उनको वही सम्मान दीजिए, उसी तरह जानो हु इज हु, ये जानना बहुत जरूरी है कौन है ये। नहीं तो फिर हम कभी कभी गांव में जो लोग हैं म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर को सोचते ये कलेक्टर है, वो कलेक्टर जिसे बात भी करता है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बैठे हैं स्टेट में, स्टेट के ऊपर सेंटर में कोई है ना? तो उसी तरह हमें हर वस्तु, इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में एवरीथिंग इन डिटेल, सब कुछ डिटेल बताया गया है, इसलिए हमें डिटेल जानना चाहिए। तो यहां पर जो ये बात है कि हमें भगवान के ऐश्वर्य को जानने के लिए या भगवान की सभिभूति और सुंदरता को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस कुछ मार्ग को चुनना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है तो इसको जानने के लिए आज के समय में हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। तो मन में प्रश्न उठ सकता है, जो भक्ति करते हैं ये भक्ति होगी सबसे सरल है, सरल है, बहुत इसी है, इसी मेथड मतलब आप किसी को अट्रैक्ट नहीं करते है ना। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया भक्ति कृष्ण आकर्षणी है, भक्ति करने से दुनिया के लोग आकर्षित हो ना हो भगवान कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। केवल जप, जप करना है, भगवान की ग्रंथों का अध्ययन करना है, भगवान को सेवा पूजा करना है, धाम यात्रा करना है, बोलते ये नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, वैसा कुछ करना चाहिए जैसा कि हिमालय में जाओ और सिद्धि प्राप्त करो। सिद्धि कितने प्रकार के? 8 प्रकार की, अणिमा, महिमा, लघिमा, फिर इप्सिता, बसिता और प्रकाम्य, कामोबसिता, ऐसा 8 प्रकार का सिद्धि है। जिन सिद्धियों को लोग देख करके कभी कभी साधारण मनुष्य को भगवान बना देते हैं भारत में, और आप देखो तो डिबेट करने के लिए इतना आगे बढ़ते कहने का नहीं। कैसी सिद्धि है? आज के समय में जो सिद्धियां हैं ये सिद्धि वैज्ञानिक लोग भी कुछ यंत्र बनवा करके इसको प्राप्त कर लिए हैं। जैसा कि इसी में अगर कहा जाएगा इप्सिता सिद्धि, इप्सिता सिद्धि के अनुसार आप यहां बैठो और आप सोचा कि आपका गांव बिहार है, बिहार में एक जंगल में एक सिटी बना दिया, तो जिसके पास ये इप्सिता सिद्धि होगा वो व्यक्ति यहां बैठे बैठे सोच करके वहां पर एक सिटी बना देगा। ऐसी सिटी पहले भी बनाया गया है, बनाया कोई कोई कौन बनवाया? विश्वामित्र मुनि ने एक सिटी बना दिया था, कहां? दूसरा स्वर्ग बनाया था, किसके लिए? त्रिशंकु के लिए। उसी तरह कर्दम मुनि ने भी एक महल बनाया था, उड़ने वाला जहाज। ऐसा पहले इप्सिता सिद्धि, तो ऐसा सिद्धि। अगर कोई बोलेगा बसिता सिद्धि है किसी के पास, बसिता सिद्धि मतलब जो बसीकरण कर देते हैं, लोग बोल रहे, लाखों लोग सुन रहे हैं, बसीकरण की सिद्धि। प्रकाम्य सिद्धि, जादू प्रकार की, प्रकाम्य जो जादू है, जादू मतलब आप कुछ लोगों को दिखा दो जो कि नहीं देखा कभी, अलौकिक, दिखाते ना सब, राख से सोना दे दिया भगवान प्रणाम, कुछ ऐसा अलौकिक विभूतियों, विभूतियां शरीर से निकाल देना किधर से, ये प्रकाम में सिद्धि। उससे बड़ा सिद्धि है कामवशयिता। कामवशयिता सिद्धि ऐसा है जिस सिद्धि के द्वारा, अगर गर्मी लग रहा है आपको, आपको सबको गर्मी लग रहा है, तो मेरे पास अगर वो सिद्धि होता है ना, आप लोग इधर में पूरा ठंडा ठंडा ऐसा लगेगा आपको, मतलब यहां पर एसी का माहौल हो जाएगा। ये सिद्धि है। जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो व्यक्ति नमस्कार करेंगे, जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है इज अलर्ट, वो अलर्ट रहेगा, नहीं ये तुम्हारा सिद्धि है, ये सिद्धि थोड़ा थोड़ा समय तुम दिखा सकते हैं, पूरा समय नहीं दिखा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा सिद्धि है तो फिर हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज या आपको ये सब खरीदना जरूरी नहीं होगा, गवर्नमेंट का इतना योजना बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वैसा प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि लोगों को चमत्कार लगता है और लोग इस प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन ये कैसा है? ये सुदुर्लभ, इजीली मिल सकता है आपको ऐसा सिद्धि कुछ समय प्रयास करने से। लेकिन वेदे सुदुर्लभ मधुर्लभ मात्म भक्तो, ये भक्तों के लिए जो कृष्ण है भक्ति के मार्ग से, ये जो है ये आसान से नहीं मिलता है। लेकिन ये आसान तरीका है भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से, भक्ति के मार्ग को प्रकट ग्रहण करने से 6 चीज हमको मिलता है। पहला है क्लेशाग्नि, जो भी दुख कष्ट धीरे धीरे जाने लगता है भक्ति करने से, जो भक्ति करता है उसको पता चलेगा। काल आप जाके जप करने लगी करिए, भगवान के ग्रंथों को अध्ययन करें, गीता भागवत वेद उपनिषद पुराण आदि को ग्रहण पढ़िए घर में, और मंदिर में आइए, सत्संग प्रोग्राम में भाग लीजिए। विदिन फ्यू ईयर्स, कुछ मंथ के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा आपका क्लेशाग्नि कम हो रहा है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। यह है एक्सपेरियंशियल साइंस, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपीरियंस, आपको अनुभव होगा। ये मैं ये नहीं कह सकता आपको जब करो तो काल सुबह सुबह आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा। केशाग्नि, दूसरा शुभदा, सदैव शुभ होगा आपको, ऑल ऑस्पिशियस, घर के सामने में लगते हैं शुभ लाभ, शुभ। एक्चुअली हम सभी को शुभ चाहिए, गुड फॉर्चून। व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस अन टू मी, कब मेरे जीवन में सौभाग्य आएगा? सौभाग्य उसी दिन आता है जिस दिन आपको साधु को दर्शन करते हैं, जिस दिन आप मंदिर में गए, जिस दिन आप आध्यात्मिक चीजों के बारे में जिज्ञासा शुरू किया, उस दिन से आपका सौभाग्य शुरू होता है। लोग क्या बोलते हैं, गुड फॉर्चून मीन्स व्हेन आई गेट ए गुड जॉब, अच्छा जॉब मिला तब, शादी हो गई, मेरा भाग्य बदल गया, ऐसा लोग सुनते। इन भक्ति करने से ये सब तो लोयर मिलेगा, हायर टेस्ट भी मिलेगा, इसलिए शुभदा। फिर बताया गया भक्ति करने से आपको ये है मोक्ष लघुदा। लोग सब मोक्ष की ओर चाहते, लिबरेशन, आज भी सुबह भी बताया गया था, सारूप्य, साजुज्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, ये जो पांच प्रकार मुक्ति, ये मुक्ति मुकलित करंजली वो ऐसा खड़े रहती है प्रणाम करके, भक्ति करते ना, 16 में 60 राउंड जप करते, भक्ति करते, तो मुख्य वहां पर खड़ी रहती है, कहते यू वांट लिबरेशन, आप चाहते हैं तो मैं भी देता हूं, लेकिन भक्त कहते नो नो आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मुख्य लग दे, छोटा कर देता है। भक्ति करने वाला को ज्यादा रस मिलता है इसलिए इसको छोटे कर देता है, इसलिए इसके रस कम पड़ता है। मुख्य लघुदा, फिर सुदुर्लभ था, ये सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, आसान से नहीं मिलता है। और हमें शुद्ध भक्ति करने से ये हमारे जीवन में सदैव कृष्ण आकर्षण, ये क्या करता है, कृष्ण को आकर्षित करता है, कृष्ण आकर्षित हो जाता है कोई अगर भक्त उनकी नाम जप करता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार विधि में उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उन्होंने ऐसा नहीं कहा श्रवणम कीर्तनम काली, ऐसा नहीं कहा। लोग प्रोपाउंड द न्यू डॉक्ट्रिन्स, नया क्या, काली का भजन करो और किसी देवी देवताओं को भजन करो तो आपको फल मिलेगा, नहीं। प्रहलाद महाराज इज फुलिश पर्सन, वो क्या मूर्ख है जो कि ऐसा बताएंगे हमको। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जीसस ने 10 कमांडमेंट में बताया कि thou shall not kill, आप लोग हत्या मत करो, बट न्यू टेस्टामेंट में लोग बदल के रखा है thou shall not murder, आप हत्या मत करो मनुष्य का केवल, बाकी सब खाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये हो सकता है, आप लोग इंटरप्रिट कर सकते हो, बट जीसस इज नॉट एनफ इंटेलिजेंट, ही डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंट, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, वो यूज नहीं कर सकते मर्डर शब्द, उस टाइम मर्डर शब्द नहीं था, ये क्या नहीं यूज, बट उन्हें कहा था स्पेसिफिक वर्ड क्या, thou shall kill, आप हत्या मत करो। तब तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रचार किया था, सारे विश्व में प्रचार किया, लेकिन क्रिश्चियंस बिकम मास्टर्स ऑफ किलिंग, मारने में एक नंबर। तो इसलिए हम जो देखते हैं ये जो कृष्ण आकर्षण, कृष्ण हमारा, तो इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना है। किस तरह कीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कृष्ण को आकर्षित करता है जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, इस प्रकार 9 भक्ति। तो इस भक्ति जो है इसको रूप गोस्वामी ने 3 भाग में विभक्त किया, पहला है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो आज के समय कड़ु शूद्र संभव कड़ी युग में ये भाव प्रेम की क्या बात कहा जाए, ये साधन करने के लिए भी लोग लायक नहीं है, फिट नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा साधन विधि, तो इसलिए विधि विधानों को पालन करना है। अपने अपने जीवन में कई लोग कई विधियां मना लिए हैं, कई लोगों का विधि अलग अलग है, अलग अलग संस्थान से अलग अलग विधि भी मिलता है, लेकिन विधि विधान जो है ये हमें किस तरह करना चाहिए, आचार्य या गुरु दिया हुआ जो विधि विधान उसी अनुसार करना है, व्हिम्सिकली नहीं। जो नहीं बताया गया है, जो आपको नहीं कहा गया है, उस तरह का तपस्या करने का कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको कहा गया है, कुछ दो तीन पांच दिन पहले मुझे एक भक्त ने पूछा, मैं क्या रामकृष्ण हरि जप कर सकता हूं या मैं हरे कृष्ण जप करूं, मुझे ऐसा प्रश्न पूछा। मैंने कहा आप विधि पालन कर रहे हैं, विधि विधि अर्थात है जो आपको कोई दिया है कि इसको आप पालन करना है। जैसा कि अगर हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, अगर हम यहां पर गणेश ड्राइविंग स्कूल में दाखिल हो गए और वहां पर हमको ट्रेनर हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहा है यहां क्लच यहां ब्रेक ऐसा, और हम जा करके वहां उसकी बाजू में बैठे हैं, वो ट्रेनर हमको बता रहे हैं लेकिन हम क्लच की जगह में गियर, गियर की जगह में और कुछ ब्रेक कर रहे हैं, हाँ तो परेशानी होगी कि नहीं। तो इसलिए जो हमको बताया गया है, मैं कहता हूं अगर आपने सफिशियंट ट्रेनिंग नहीं लिया, कोई भी संस्थान में जुड़ गए केवल नाम को मात्र, आज के लोग दे आप फैशन बोलते मैंने भी गुरु किया है, मैंने भी आध्यात्मिक हूं, लोग बड़े गर्व से कहते हैं, और पूछो उनको कुछ भगवद गीता भागवतम रामायण महाभारत या कुछ जीवन में कुछ करते हैं तो नहीं, कुछ नहीं करते। अगर कोई ऐसा नहीं करते हैं देन इफ यू आर कमिंग हियर देन गेट ट्रेनिंग, इसलिए एजुकेशन चाहिए जिसको विधि विधान कहते हैं। तो विधि विधान जाओ धीरे धीरे फॉलो करोगे तो फिर आप रागानु को भक्ति में जाओगे। रागानु तो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, स्पॉन्टेनियस मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, गीता पढ़े हो आज, तो बोले यस मैंने आज पढ़ा है, तो इसको रोज बोलना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः प्रवृत्त करने लगेगा। जब स्वतः प्रवृत्त करेंगे, ये प्रभुपाद जी कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सारे विश्व में ये भगवद गीता का जो सही ज्ञान है ये प्रचार कर रहा है। तो आप लोग आए हो, जो नया भी आए हो या जो रेगुलर भी आते हो, तो यू प्रीच दिस मैसेज, ये जो ज्ञान को आप प्रचार करिए, लोगों को बताइए। तो हम ये सारे भगवान की जो भी आप जानते हैं, द बेस्ट प्रोसेस टू गिव समवन इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए पुस्तक वितरण आप जो करते हो ये सब आ जाता है। और पुस्तक वितरण करने के साथ साथ हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहना चाहिए। यहाँ पर जब बाहर जाते हो तो आपको जप की माला देता है, आप जप कर सकते हैं, वहां पर कुछ बुक्स भी ले सकते हैं। तो शील प्रभुपाद की, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रुद्रशील प्रभुपाद की, श्री श्री राधारास बिहारी जी की, श्रीमद् भगवद्गीता के, हरे कृष्ण।